इस दिवान पे सब चरण और कृष्ण भक्ति के नाम के स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वर्ष गोविंद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरांगस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं सात्विकं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाम्बिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतभजकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्यदेशधारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यद्वातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावरज्ञाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृशे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धामवृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमाकुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरानापरः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम अर्थात बलराम। इसलिए आज के दिन खास करके हम हरे राम भी कहेंगे। वैसे कृष्ण और राम या बलराम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही भगवान है, केवल भिन्न उनका देह मात्र है, आकृति में थोड़ा सा अंतर है बस, अन्यथा कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। वृंदावन, मथुरा और द्वारका में जब भी कथा होती है, बलराम जी भी श्री कृष्ण के साथ में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के प्रारंभ में ही जब परीक्षित महाराज 9 स्कंदों की कथा सुन चुके हैं सुखदेव महाराज से, और मथुरा की नारियां कैसे श्री कृष्ण का गुणगान करती हैं वो सुनने के बाद, और आगे राजा परीक्षित श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं, तो वो सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि मुझे कृपया भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताइए, जो कि अपने अंश बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए थे ब्रजमंडल में, मैं उनके बारे में सुनना चाहता हूं। तो शुरुआत से ही जब महाराज परीक्षित श्री कृष्ण के बारे में सुनने के लिए प्रश्न कर रहे हैं तो साथ साथ बलदेव का भी उल्लेख कर रहे हैं। कृष्ण बलराम की जोड़ी तो हमेशा वृंदावन में रहती है। फिर श्री कृष्ण का स्मरण करते करते परीक्षित महाराज कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे वसुदेव के यहां से चले गए नंद महाराज के घर में, नंद गोकुल में, और ये कैसे हुआ कि संकर्षण, जो कि आपने बताया था 9वें स्कंद में बताया था सुखदेव गोस्वामी ने, कि संकर्षण अब बलदेव के रूप में प्रकट होंगे, रोहिणी देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पहले तो वो देवकी के गर्भ में थे और फिर कैसे रोहिणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ, ये रहस्य भी मैं जानना चाहता हूं। फिर श्री कृष्ण जब वृंदावन में नंद गोकुल में रहे तो कहां कहां रहे, उन्होंने कौन से कार्य किए, उनकी लीलाएं कौन सी थी, फिर आगे चल के मथुरा में और फिर द्वारका में उन्होंने कौन सी लीलाएं की, कृपा करके मुझे सुनाइए, मैं सुनने के लिए बहुत आतुर हूं। उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करके ही मेरे दादा जनों ने अर्थात पांडवों ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि रूपी विशाल समुद्र को बड़े आसानी से पार कर दिया था, जो कि साधारण दृष्टि से देखा जाए तो पार करना प्राय असंभव था, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो सागर बहुत विशाल था, दूसरी बात उस विशाल समुद्र में ऐसे बड़े बड़े जलचर प्राणी, तिनिंगल जैसे प्राणी थे भीष्मदेव के समान, जो कभी भी आसानी से अर्जुन आदि वीर शूर योद्धाओं को निकल सकते थे, परंतु केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की कृपा स्वीकार करके ही वो आसानी से इस युद्ध को जीत पाए, और उनकी कृपा से ही मैं जो कि पांडवों का अंतिम वंशज था मैं बच गया, जबकि अश्वत्थामा में ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया मुझ पर, वही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने मेरी रक्षा की, तो मैं उनके बारे में सुनना चाहता हूं। ऐसा नहीं सोचिए कि मैंने अब मृत्यु के पहले उपवास रखने का व्रत लिया है, ना मैं कुछ जलपान करूंगा ना कुछ खाऊंगा तो शरीर को पीड़ा होगी, और ऐसे पीड़ा के समय शायद मैं कृष्ण कथा नहीं सुन पाऊंगा, ऐसे मत सोचिए। यद्यपि साधारण दृष्टि से प्यास और भूख से शरीर को कष्ट होता है, फिर भी आपके मुखार बिंद से जैसे जैसे मैं श्री कृष्ण की कथा का अमृत का पान करता हूं, तो फिर मेरे सारा शरीर शारीरिक कष्ट मिट जाता है। त्वं मुखां भोजं श्रुत हरि कथामृतम्। तो आपके मुखारविंद से निकले हुए ये कथा के अमृत का पान जब मैं करता हूं पिबंतम, तो फिर मेरी सारी थकावट, मेरी भूख प्यास सब मिट जाती है। और वास्तव में यही दवाई है हर चीज के लिए। कली कलमशत नम कृष्ण चरितम। तो ये कृष्ण का चरित्र जो है, कृष्ण कथा है, ये कलयुग के दोषों को विनष्ट करने वाला है, इसलिए सभी को सुनना चाहिए। निवृत्त तर्षय रूपगीय मानान भव औषधा श्रोत्र मनोभिराम कौतम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत विना पशुघ्ना। राजा परीक्षित ने यह प्रसिद्ध श्लोक कहा। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे मुनिवर सुखदेव गोस्वामी जी, भगवान कृष्ण की कथा अवश्य सुननी चाहिए और बोलनी चाहिए, इसके बारे में स्मरण भी करना चाहिए, और विशेष करके गुरु शिष्य परंपरा में ऐसी कथा चलती आती है, और ऐसे लोग नहीं सुन सकते हैं इस कथा को जो कि पशुघ्न है। पशुघ्न अर्थात पशुओं की हत्या करने वाले। तो पशुओं की हत्या करने वाले का मतलब क्या है? केवल जो मांसाहार करते हैं, केवल वही नहीं। तो वैष्णव आचार्य ने तात्पर्य दिया है इस शब्द का और बतलाया है कि जो भी व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य से आसक्त होता है, वो व्यक्ति भगवान के भक्ति एकाग्र चित्त से निष्ठावान होकर नहीं कर पाता है। जैसे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोगेश्वरि प्रसक्तानां तया पहृत चेतसां विदसायात्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिनके चित्त में भोग और ऐश्वर्य के प्रति तीव्र आसक्ति है, उनके मन में भगवान की सेवा के प्रति जो एकाग्रता चाहिए, जो अनन्य भाव चाहिए, वो उत्पन्न नहीं हो सकता। तो जितना ज्यादा हमारा शरीर, मन और हमारी वाणी भोग और ऐश्वर्य के या संसार के विषयों में मग्न हो जाते हैं, उस हद तक हम तीव्रता से भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो पशुघ्न शब्द का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति संसार को एक भोग का साधन समझता है और इसी को अपने जीवन का लक्ष्य समझता है, तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे कृष्ण कथा का मूल्य। तो ये किसके लिए है कृष्ण कथा? निवृत्त तर्षय, जिनको संसार को भोगने की जो प्यास है वो मिट चुकी है, जो तृष्णा है, जो प्यास है, लालसा है कि मुझे और धन चाहिए और मुझे प्रगति करनी है, खूब भोग करना है मुझे, ये जो प्यास मिट गई है या कम से कम जो मिटाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए है। निवृत्त तर्षय उपगीयमानः। तो ऐसे गायन जो होता है, ऐसे कथन श्रवण जो होता है, ऐसे लोगों के बीच में विशेष करके होता है। और ये लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि कृष्ण कथा एक ऐसी औषधि है जो सबसे बड़े रोग को नष्ट कर सकती है, और वो रोग है भव रोग। भव औषधा श्रोत्र मनोभिरामार। वैसे हर दवाई की तरह है, खाने में दवाई इतनी अच्छी नहीं लगती शुरुआत में, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है। उसी तरह से कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन जब हम शुरुआत में करते हैं, हो सकता है कि हमें इतना अच्छा न लगे, ऊब जाए, नींद आ जाए, परंतु जैसे जैसे हम इस कथा के अमृत का पान करते रहेंगे, वैसे वैसे मनः अभिरामः, हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। क उत्तम श्लोक गुणानुवादा, तो ऐसे कौन व्यक्ति है जो उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के बारे में नहीं सुनेगा? केवल ऐसे प्रशुभन ही नहीं सुनेंगे, न केवल जो क्रूर व्यक्ति हैं, जो मांसाहार आदि करते हैं, परंतु हर व्यक्ति जो भोगी है वो व्यक्ति भी रुचि नहीं रख पाएगा। और हम सबका अनुभव है, आप सब ने अवश्य अनेकों को प्रचार करने का प्रयास किया होगा, आपके रिश्तेदारों में, आपके मित्रों में, हो सकता है परिवार में भी, कि चलो कृष्ण कथा करो, आओ मंदिर में, सत्संग में आओ, कुछ सुनो भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान के नाम का जप करो, दर्शन करो। लेकिन इतना सुनने पर भी उनकी निष्ठा जागृत नहीं होती है, वो इतने आस्था उनके मन में बैठती नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार को भोग करने की इच्छा अभी तक तीव्र है, उनके मन में यही भावना है कि नहीं, संसार का भोग मुझे करना चाहिए, भक्ति करने से क्या लाभ होगा, या भक्ति करना भी है तो थोड़ा कुछ कर लेंगे, परंतु मुख्य जीवन का उद्देश्य तो यही है, संसार का भोग करना। तो परीक्षित महाराज कहना चाहते, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं सुखदेव जी, इसलिए भले मेरा शरीर पीड़ित हो प्यास और भूख से, अब सात दिन, सातवां दिन था उपवास रख के, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि काफी कष्ट हुआ होगा सुखदेव परीक्षित महाराज को, और साथ साथ सुखदेव जी भी उपवास कर रहे थे ना। हम एक दिन निर्जल उपवास रखने का प्रयास करते हैं तो बस सोचते हैं कब दिन खत्म हो जाएगा और कब हम उपवास तोड़ेंगे। परीक्षित महाराज का सातवां दिन था उपवास का, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी से राजा ने कहा कि आप चिंता नहीं कीजिए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और फिर कहने लगे कि हे राजन, मैं आपके भावना से बहुत प्रसन्न हूं, आप योग्य राज ऋषि हैं। बहुत समय पहले एक राजा थे जिनका नाम था शूरसेन, तो वो आके बसे मथुरा में और मथुरा को अपनी उन्होंने राजधानी बनाई। वैसे मथुरा का इतिहास इस प्रकार से है कि ये त्रेता युग से चलते आया है, बल्कि इसके पहले से भी। इसके पहले इसका नाम था मधुबन, सत्ययुग में भी ध्रुव महाराज जी ने यह मधुबन में तपस्या की थी अनेक वर्षों तक, 6 महीने तक बल्कि, और वहां भगवान के सामने प्रकट हुए थे। और इसी मधुबन में त्रेता युग में श्री रामचंद्र, अयोध्या वाले रामचंद्र के छोटे भाई शत्रुघ्न आए थे, क्योंकि मधुबन से कई ऋषि मुनि अयोध्या में श्री राम के पास आए थे शिकायत लेकर कि यहाँ दो बड़े असुर हैं और एक का नाम है मधु और उसका पुत्र है लवण, तो ये दोनों ने हमारे लिए बहुत कष्ट कर रखा है, हमें कोई हमारी साधना, हमारे यज्ञ आदि करने नहीं देते हैं। तो शत्रुघ्न उस समय श्री राम की अनुमति से चले आए, लवणासुर का वध किया वहां पर, मधु का भी वध किया, और उसके बाद में उस शहर का नाम हुआ मथुरा, फिर आगे बन गया मथुरा, और फिर सूर्यवंश का राज्य थोड़े वर्षों बाद समाप्त हो गया। आप तो जानते हैं कि क्षत्रियों के दो वंश होते हैं, एक है सूर्यवंश जिसमें श्री राम प्रकट हुए, और दूसरा है चंद्रवंश जिसमें श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो सूर्यवंश की का राज जो है मथुरा में समाप्त हुआ और यादवों का राज शुरू हुआ जो कि चंद्रवंश से थे। और शूरसेन यदु वंश के थे, तो यादवों के राजा वो बने। अब शूरसेन के एक पुत्र थे वसुदेव। वसुदेव वैसे उनके क्षत्रिय रानी से उत्पन्न हुए पुत्र थे, और शूरसेन की एक वैश्य पत्नी थी जिनसे नंद महाराज जी का जन्म हुआ। ऐसे देखा जाए तो फिर नंद महाराज जी जो वृंदावन में रहते थे और वसुदेव जो कि मथुरा में रहते थे, ये दोनों भाई थे और अच्छे मित्र भी थे। तो शूरसेन के बाद वसुदेव ने राजगद्दी नहीं संभाली, बल्कि और एक यदुवंश के राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन राजगद्दी पर बैठे और उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस, भोज वंश के कंस। और वहां पे वसुदेव का विवाह हुआ देवकी से। देवकी वैसे देवक राजा के पुत्र थे, पुत्री थी। देवक राजा और उग्रसेन दोनों भाई थे। और इस तरह से जब विवाह तो हो गया और वसुदेव देवकी को ले जा रहे थे, तो कंस ने बड़े बड़े आराम से और बड़े प्यार से अपनी छोटी बहन को ले जाना चाहा अपने पति के घर में। तो रथ में जैसी ये कथा तो आपने सुनी होगी कि आकाशवाणी आई और इस आकाशवाणी ने कहा कि हे कंस, तुम बड़े मूर्ख हो। तुम इतने लाड़ प्यार से जिस बहन को, जिस स्त्री को ले जा रहे हो उसके नए घर, उसका आठवां पुत्र अष्टमो गर्भ, आठवां पुत्र जो है तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। अब ये देवताओं की वाणी थी। देवताओं के पास ये शक्ति होती है कि वो ऐसे सब कार्य कर सकते हैं, वो तो ऊपरी लोकों में रहते हैं। तो जैसे ही कंस ने सुना इस आकाशवाणी को, तो आग बबूला हो गया और अपने बहन देवकी को बालों से पकड़ के अपना तलवार निकाल के देवकी की हत्या करने ही वाला था कि उस समय किसी न किसी तरह से वसुदेव ने समझा बुझा के कंस को रोक दिया। और वसुदेव ने सोचा कि जब तक मैं ऐसे कुछ बात नहीं कहूंगा कि जिससे कंस मेरा विश्वास करेगा, तब तक वो मानेगा नहीं मेरी बात। अब देवकी के प्राण को बचाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो फिर अंत में जब और कोई उनके तर्क और वाद काम नहीं कर रहे थे, तो वसुदेव जी ने कहा कंस से कि ठीक है, तुम्हें हमारे आठवें पुत्र से भय है ना, तो मैं ये वायदा करता हूं कि जैसे हमारे पुत्र जन्म लेंगे वैसे वैसे मैं आपको इन पुत्रों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो हालांकि कंस बड़ा असुर था, लेकिन वो जानता था कि वसुदेव सुर है, देवता है, और देवता होने के कारण वो अपने वो सत्य संकल्प, अपने संकल्प पे अच्छे रहते, ठीक रहते, कभी अपने वचन को तोड़ते नहीं है। अब जितने भी यदुवंश में रहने वाले राजा थे, अधिकतर वो सब देव लोक से प्रकट होकर यहां जन्म लिए थे। इसका इतिहास इस प्रकार से है कि जब द्वापर युग के अंत में पृथ्वी माता बड़ी पीड़ित हो गई थी, क्योंकि क्षत्रियों का के पापों का भार, उनकी हिंसा का भार बहुत बढ़ गया था और पृथ्वी माता के लिए असहनीय हो गया था। तो पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाके क्षमा याचना की थी या सहायता की याचना की थी। देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पे गए। क्षीर सागर में जैसा आप जानते हैं क्षीर उदकशायी विष्णु निवास करते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में वाणी प्रकट कराई और ब्रह्मा जी ने फिर देवताओं से कहा कि भगवान ने ऐसे कहा है कि वो हर बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी लोक में क्या हो रहा है। वो शीघ्र ही मथुरा में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में प्रकट होने वाले हैं, और इसलिए आप सबको अर्थात देवताओं को वहां यदुकुल के यदुकुल में पुत्र और पौत्र बनके प्रकट होना है, और भगवान कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए आपकी पत्नियों को भी वहां यदुकुल में प्रकट होना है। और इसके पहले कि भगवान वहां प्रकट होंगे, उनके अंश संकर्षण अर्थात बलदेव वो भी पहले प्रकट होंगे और श्री कृष्ण के आगमन की तैयारी करेंगे, और साथ साथ में भगवान की माया शक्ति वो भी प्रकट हो जाएंगी। तो ऐसा कह कि फिर ब्रह्मा जी स्वधाम चले गए, ब्रह्मलोक चले गए। तो ये जो भी कंस के साथ में थे, हालांकि कंस असुर था, परंतु उनके साथ में अनेक जो लोग थे वो सब देवलोक के निवासी थे जो अब यहाँ प्रकट हो चुके थे। तो वसुदेव भी एक ऐसे सज्जन थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो कंस तो समझ गया कि वास्तव में वसुदेव के वचन पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। तो कंस ने कहा ठीक है, मैं अभी मेरी बहन देवकी को नहीं मानूंगा। जब पहले पुत्र का जन्म हुआ तो बड़ा कष्ट हुआ वसुदेव को कि यदि मैं पुत्र को नहीं ले जाऊंगा तो मुझसे बड़ा अधर्म हो जाएगा, क्योंकि मैं वचन तोड़ दूंगा, और यदि मैं ले जाऊं पुत्र को तो कंस इसकी हत्या कर देगा, तो क्या किया जाए। अंत में वसुदेव ने बच्चे को लेकर कंस के सामने रखा, कंस का हृदय पिघल गया। एक साधु को देखकर, साधु के व्यवहार को देखकर कभी कभी दुष्ट से दुष्ट असुरों का हृदय भी पिघल जाता है। तो कंस ने कहा नहीं नहीं वसुदेव, वैसे भी जो आकाशवाणी हुई थी वो ये थी कि तुम्हारा आठवां पुत्र जो है वो मेरी हत्या करेगा, तो पहले पुत्र से मुझे कोई डर नहीं है। तो प्रसन्न होकर वसुदेव वापस चले गए, परंतु वसुदेव जानते थे कि कंस देव जैसे दुष्ट असुर के बातों में विश्वास नहीं रखा जा सकता है। और वैसे ही हुआ, हुआ ये कि इस समय नारद मुनि सोच रहे थे कि कंस अच्छा व्यक्ति बन जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो भगवान आएंगे नहीं, इतने सारे असुर पड़े हैं दुनिया में, इन सब की हत्या करनी है, धर्म की ग्लानी हुई है, अधर्म की वृद्धि हुई है, अब इतने सारे दुष्ट लोग हैं, इनका विनाश इनका संहार करने के लिए भगवान को अवतीर्ण होना है। अब ये कंस अच्छा आदमी बन गया, भूमिका उसने बदल ली, जैसे समझ लीजिए एक नाटक होने वाला है और नाटक में जो बुरा आदमी है वो अच्छा बन गया, अचानक नाटक में तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो सारे सबने अपने अपने लाइन सीखे हुए होते हैं, और अचानक जो बुरा आदमी होता है क्षमा करना ही नहीं, नहीं मैं कुछ करूंगा नहीं, तो फिर सब खराब हो जाएगा। तो नारद मुनि चाहते थे कि कंस और भी पाप करे जिससे कि भगवान और शीघ्र प्रकट हो जाए, कहीं ऐसे ना हो कि कंस के ऐसे बदलाव को देखकर भगवान कहने चलो अभी हम और देर से आएंगे। साथ साथ में नारद जी असुरों का भी भला करना चाहते थे, क्योंकि कंस जैसे जब कृष्ण के कर कमलों द्वारा मारे जाएंगे तो उनको भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि भगवान परम सत्य है, भगवान के प्रेम में, भगवान की क्रोध में उनके किसी की हत्या करने में कोई अंतर नहीं है, ये सारी चीजें भगवान के प्रेम का ही प्राकट्य है। भगवान जो भी कुछ किसी के साथ क्यों ना करें उस व्यक्ति का भला ही होता है। तो नारद मुनि जैसे संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। और ये प्रश्न उठाया जा सकता है, फिर नारद मुनि जब ऐसे उकसाया और भड़काया कंस को आके, तो बुरा तो हुआ ना उन छह बच्चों का, लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है और वो थोड़ी देर में आपको बताएंगे। परंतु नारद जी वहां आए और नारद जी ने काफी कुछ कह दिया। नारद जी ने कहा, मैं अभी अभी स्वर्गलोक से आया हूं, वहां मैं देवताओं की सभा में उपस्थित था, देवलोक में चर्चा चल रही थी कि असुरों का वध कैसे करना चाहिए और उसमें आपका भी नाम आया। और इतना ही नहीं, ऐसे भी भविष्यवाणी हुई थी कि आप वसुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे भगवान, और आपकी हत्या करेंगे और आपके साथी जितने भी है सबकी हत्या होगी। तो ये असुरों, ये जो देवताओं की ये योजना है। और साथ साथ में आप ये नहीं सोचना कि पहला कौन सा है, आठवां पुत्र। देखिए, जब आठ पुत्र होते हैं तो बाकी सात को अलग कर दीजिए तो ये आठवां हो जाएगा ना। आठ पुत्रों में से कोई भी सात ले लीजिए, दूसरे से आठवां लीजिए, पहले से सातवां लीजिए, तीसरे को छोड़कर बाकी सात ले लीजिए, तो सात कोई भी पुत्र ले लीजिए, जो रह गया वो आठवां हो जाएगा। तो कोई भी पुत्र इनमें से आठवां हो सकता है। और दूसरी बात ये है, देखो कंस, ये आठ उंगलियां हैं। अब पहला यहां से गिनोगे तो ये पहला, अब यहां से गिनोगे तो ये पहला हो जाएगा। तो आठवां कौन सा है इसके बारे में जरा सोच ले। तो कंस का मन बड़ा विचलित हो गया कि अरे, और एक असुर व्यक्ति को भड़कने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, इसलिए कोई आके कुछ कह देता है तो अचानक वो आग भूले होकर कुछ ना कुछ रजोगुण के और तमोगुण के प्रभाव में आके कर बैठते हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम बस इतने आसानी से भड़क नहीं जाए। हाँ, दुनिया में कई घटनाएं होंगी, कई लोग आके कुछ ना कुछ कहेंगे करेंगे, प्रतिदिन ऐसे कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई आके आपसे टकराएगा रास्ते में जाके, कुछ ना कुछ होते रहेगा। आपके सामने गाड़ी है, कुछ गलती कर लेता है, छोटी चीज बड़ी चीज, लेकिन हमें सत्वगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए। ये एक भक्त की पहचान है, बिना वजह या वजह होने पर भी समझदारी से काम लेना चाहिए। तो खैर, जब ऐसे नारद जी ने कहा, ये गर्ग संहिता, हरिवंश, ऐसे शास्त्रों में भी विस्तार में इनका इसका उल्लेख है, तो कंस भड़क के चले गए सीधे वसुदेव के पास, उस पहले बच्चे को लिया और पत्थर से टकरा कर उस बच्चे के बेचारे की हत्या कर दी। एक साल बाद दूसरा बच्चा हुआ, दूसरे के साथ भी कंस ने ऐसे ही किया, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, ऐसे छह बच्चे लगातार एक के बाद एक कंस मारता गया। हम सोच सकते हैं कि कंस कितना क्रूर हुआ होगा। ये आतंकवाद जो है ये परंपरागत चलती आ रही है, कोई नई बात नहीं है आतंकवाद, ये पुराने जमाने के आतंकवाद। तो पहले हिरण्यकश्यप के समय से भी चलता है, ऐसे कोई नई बात नहीं है, वो भी सारे सत्युग से चलते, सत्युग के पहले आतंकवाद हिरण्यकश्यप। तो खैर, छह पुत्र ऐसे मर गए, तो देवकी का हृदय टूट गया था, जैसे कि किसी भी माँ का होगा जब वो देखेंगे कि छह पुत्र एक के बाद एक मारे गए उनकी आंखों के सामने। तो ये छह पुत्र थे कौन? ऐसे शास्त्रों में बताया गया है कि वास्तव में ये मरीची नाम के ऋषि के पुत्र थे, इनको षडगर्भ कहते हैं। ये छह बच्चे जो देवकी के छह पुत्र थे षडगर्भ कहलाते हैं। बहुत पहले ये मरीची के पुत्र थे, मरीची ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है और सृष्टि के सृजन के समय ब्रह्मा जी तरह तरह से प्रजा की उत्पत्ति करते हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रजापतियों को उत्पन्न किया अपने शरीर के अलग अलग भागों से, और अपने मन से भी उन्होंने अनेकों को उत्पन्न किया। तो मरीचि उनके पुत्रों में से एक थे। तो मरीचि के 6 पुत्र थे और उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी का मजाक उड़ाया। जब ब्रह्मा जी ने कोई एक गलती कर ली तो ब्रह्मा जी न केवल उनके दादा थे बल्कि ब्रह्मांड के सबसे पहले ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, सब गुणों से संपन्न थे। तो ऐसा उनका मजाक उड़ाना उचित नहीं था। तो उनको शाप मिला, तुम एक असुर के योनि में पैदा हो जाओगे। और फिर मरीचि के जो 6 पुत्र थे वो कालनेमी नाम के एक असुर के पुत्र बन गए। और ये 6 पुत्र इनके दादा थे हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप ने एक बार देखा कि मेरे 6 पोते ये तपस्या करने चले गए कहीं पर और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने गए, मुझे बुलाया नहीं कि मैं भी समर्थ हूं, मुझे छोड़कर ब्रह्मा जी की तपस्या करने चले गए हैं, तो अच्छा नहीं लगा। ये 6 पुत्रों ने, इन 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पूछा कि क्या वरदान चाहिए। तो 6 पुत्रों ने कहा कि हमें रक्षा चाहिए कि हमारी मृत्यु कहीं देवताओं के हाथों से ना हो, यक्षों के हाथों से नहीं, राक्षसों के हाथों से नहीं, ऐसे अनेक चीजें मांग ली। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगले जन्म में तुम कंस के पुत्र हो जाओ, कंस देवकी के पुत्र हो जाओगे और अब तुम्हारा पिता जो है कालनेमी वो कंस बनेगा और वही तुम्हारी हत्या करेगा। तो इस जन्म में जो तुम्हारा पिता है वो अगले जन्म में तुम्हारा मामा बनेगा और तुम्हारी ही हत्या करेगा। कभी कभी ऐसे भी होता है। आज इस जन्म में एक तरह का संबंध और अगले जन्म में कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो एक हमारे परिवार में रहने वाली व्यक्ति अगले जन्म में हमारी हत्या करने का कारण भी हो सकता है। ये है भाग्य। संसार के कर्मों का जो परिणाम है ऐसे विचित्र है, हम समझ नहीं सकते। गहनों कर्मणागति ही भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। इन कर्म सिद्धांतों को समझना बड़ा मुश्किल है। तो खैर, फिर ये 6 पुत्र अब देवकी के 6 पुत्र बन गए। और इस जन्म में जब जल्दी से जल्दी उनकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर वो अपने स्थान में चले जाएंगे, मरीचि के पुत्र बन जाएंगे ऊपर के लोकों में, स्वर्ग लोक से भी ऊपर, क्योंकि मरीचि तो बहुत ऊपर के लोकों में रहते हैं, स्वर्ग लोक से भी ऊपर। तो यदि इनकी हत्या जल्दी से हो जाए तो जल्दी से इनका जो श्राप का असर है वो मिट जाएगा और वापस अपने धाम में लौट के जाएंगे। तो नारद मुनि ने न केवल कंस का भला किया, न केवल दुनिया का भला किया, लेकिन इन षड गर्भों का भी भला किया ताकि जल्दी से इनकी मृत्यु होकर वो अपने धाम में वापस चले गए। तो ये है षड गर्भों का इतिहास। इसलिए हम देख सकते हैं कि नारद मुनि के जो कार्य थे उसमें कोई दोष नहीं था। ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं, संत होते हैं, उनके कार्य में कभी कोई दोष नहीं हो सकता है। हमेशा वो अन्यों के भलाई के लिए ही कार्य करते हैं और साथ साथ उनके शुद्धता के कारण भगवान की शक्ति उनमें होती है। वो शक्त्यावेश अवतार होते हैं। नारद जी भी एक शक्त्यावेश अवतारों में से एक माने जाते हैं। है वो जीव, परंतु भगवान की कृपा से ऐसे विशेष शक्ति का आवेश उनके अंदर होता है जिसके कारण वो अद्भुत कार्य कर सकते हैं। तो नारद मुनि, उनकी न केवल इच्छा अच्छी है सबके प्रति, लेकिन उनकी वो क्षमता और सामर्थ्य भी है उनके अंदर कि मैं अच्छा करूं। हमारे अंदर कभी कभी इच्छा हो सकती है दूसरों का भला करने के लिए, लेकिन वो शक्ति नहीं होती है करने के लिए, केवल इच्छा पर हम रह जाते हैं। लेकिन नारद मुनि सक्षम थे, इसलिए उन्होंने वो जो भी इच्छा करते हैं, जो भी वो तथाकथित श्राप देते हैं, वो अन्यों के भलाई के लिए ही होता है। तो खैर, ऐसे छह बच्चों का, षडगर्भों का की हत्या हो गई। और उस समय श्री कृष्ण के अंश संकर्षण बलदेव वो अब माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने बतलाया है, एक टीका की है इस घटना के ऊपर, षडगर्भों के बारे में। उन्होंने बताया कि माता देवकी भक्ति की प्रतीक है, कंस उस भय का प्रतीक है जो कि भक्त माया के प्रति रखता है। ये षडगर्भ हमारे हृदय में निवास करने वाले छह शत्रु हैं, षड रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो जब भक्त भक्ति करता है उसे माया से थोड़ा सा डर के रहना चाहिए, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है। वो बड़े से बड़े संतों को, ऋषियों को भी अपने काबू में कर सकती है, गुमराह करा सकती है और करती है। ऐसे इतिहास में देखा गया है, शास्त्रों में भी इनका उल्लेख है। तो भक्त को चाहिए कि वो भक्ति के नियमों का पालन बड़े अच्छे ढंग से करे, हृदय से करे, सावधानी से करे, कभी लापरवाही नहीं करे। श्रील प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों के लिए एक ऐसे कार्यक्रम बनाया है, दैनिक कार्यक्रम, वार्षिक कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने कई विधि और कई निषेध बताए हैं भक्तों के लिए। उदाहरणार्थ, हमें दिन में कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, हमें रोज कीर्तन करना चाहिए, भक्तों के संग में भगवान का दर्शन करना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, श्रीमद् भागवत और गीता आदि से कथा श्रवण करना चाहिए, दिन में भगवान की सेवा करनी चाहिए, अभक्तों से दूर रहना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। तो इन नियमों के प्रति जब हम कभी लापरवाही करते हैं तब हम कमजोर हो जाते हैं। कभी कभी भक्ति करके एक झूठा साहस हमारे अंदर आ जाता है कि नहीं, अब माया हमें छू नहीं सकती, हम अभी जब नहीं भी करेंगे तो हमें कुछ होगा नहीं। तो ऐसे अवस्था में हम कमजोर पड़ जाते हैं और माया आक्रमण करती है और फिर हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, भक्ति से दूर चले जाते हैं, जप करना छोड़ देते हैं, भक्तों का संग करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त सफल होना चाहते हैं इस आध्यात्मिक जीवन में, उनको भगवान की इस भयंकर माया शक्ति से थोड़ा बहुत डर के रहना चाहिए। डर के रहने का मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह से बस उदास होके बैठ जाएं, डरे डरे, नहीं, ऐसा नहीं। डरने का मतलब है कि हम सावधान रहें, भगवान के भक्ति के नियमों का पालन करें उत्साह पूर्वक, धैर्य पूर्वक, निश्चय पूर्वक, परंतु सावधान रहें, ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे हमारे आध्यात्मिक जीवन के प्रति कोई खतरा हो, कोई धोखा हो। यदि ऐसे हम भयभीत रहें थोड़ा बहुत माया के प्रति, माया के प्रलोभनों के प्रति, और हम साथ साथ तत्त्व कर्म प्रवर्तनात् इन भक्ति के भजन क्रिया, इन कार्यों को हम करते रहेंगे, तो फिर भगवान की कृपा से हम अच्छी तरह से प्रगति कर पाएंगे। फिर ऐसे भक्ति करते करते क्या हो जाएगा, जैसे देवकी वो भयभीत थी कंस के प्रति, कंस कब आएगा, मेरे बच्चे को मार डालेगा। हम कल्पना कर सकते हैं कि देवकी की मनोवृत्ति या भावना क्या हुई होगी। छह बच्चों की हत्या कंस ने कर दी देवकी के आंखों के सामने, कितना भय का अनुभव देवकी ने किया होगा। देवकी बिल्कुल निस्सहाय एक अबला स्त्री थी, कुछ नहीं कर सकती थी अपनी रक्षा के लिए ना अपने बच्चे के रक्षा के लिए। तो देवकी के हृदय में बहुत गहरा भय था कंस के प्रति कि कंस आके आगे क्या करेगा। और कंस आया, एक के बाद छह बच्चों की हत्या कंस ने कर दी। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने भक्ति को करते करते माया से भी डरते हैं, तो ये भय जो है ये हमारे हृदय में निवास करने वाले शर्मिपुओं को मार डालेगा। अर्थात ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य जो हमको सताते हैं, हमारे मन को हैरान करते हैं, जो हमारे सबसे बड़े बड़े शत्रु हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो हमारे शत्रु बाहर नहीं है, हमारे शत्रु अंदर है। ये बहुत एक महत्वपूर्ण सत्य है जो दुनिया के लोग नहीं जानते हैं। प्राय सभी लोग मित्र और शत्रु को कुछ अलग समझ बैठते हैं। ये व्यक्ति मेरा मित्र है, ये व्यक्ति मेरा शत्रु है। और ऐसे बंधनों में पड़ के सारे दुनिया में उत्पात जैसा वातावरण निर्माण हो जाता है। परंतु यदि हम जान लेंगे कि सच्चे शत्रु हमारे तो अंदर हैं, और आंतरिक विजय ये वास्तविक विजय है, न केवल बाह्य सैन्य बल से या आर्थिक बल से विजय प्राप्त करना, नहीं, सच्चा विजय ये है जब हमारे हृदय के अंदर इन षड रिपों को हम दमन कर देंगे, उनकी हम हत्या कर देंगे, और तब भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो इन छह पुत्रों के हत्या के बाद फिर श्री कृष्ण सीधे नहीं आए, पहले बलराम जी आए, थोड़े समय के लिए आए। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण के आगमन के लिए तैयारी कर रहे थे। अब ये छह पुत्र तो चले गए, ये षड रिपु चले गए, अब देवकी के गर्भ को ठीक करना था, तैयारी करनी थी ताकि श्री कृष्ण चले आए। तो बलराम जी वहां पर प्रकट हुए, और उसके उनके बाद में फिर श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में आए। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, माया से थोड़ा बहुत भयभीत भी रहते हैं, तो गुरु की कृपा से हमारा हृदय शुद्ध भी हो जाता है, और फिर श्री कृष्ण हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाएंगे। तो जब बलदेव जी जो श्री कृष्ण के अंश हैं माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, तो भगवान श्री कृष्ण ने योग माया देवी को बुलाया और कहा कि हे योग माया देवी, वैसे योग माया तो भगवान की शक्ति है, और तरह तरह से भगवान की लीलाओं में वो अच्छी अच्छी योजना बनाती हैं, सहायता करती हैं। तो जब वहां पे आई सामने योग माया, तो श्री कृष्ण कहने लगे,
गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोभीरलंकृतं रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्तिः।
हे देवी, हे भद्रे, तुम जाओ, गच्छन्ति, तुम जाओ, कहां जाओ, व्रजम, व्रज भूमि वृंदावन में चले जाओ। और वो वृंदावन कैसे है? गोप गोभीर अलंकृतम, अलंकृत है, सुशोभित है वो वृंदावन, किन चीजों से? गोभी ही, मतलब गायों से, तरह तरह के सुंदर गाय हैं वहां पे, और इन गायों को देखभाल करने वाले गोप गोपियां हैं। तो ये गाय और गोप गोपियां व्रज भूमि व्रज मंडल के अलंकार हैं, और इनसे ये व्रज भूमि बहुत सुंदर हो जाता है।
तो देखिए जहाँ गाय की सेवा होती है वो जगह बहुत सुंदर बन जाता है।
फिर श्री कृष्ण कहने लगे, रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले,
जाओ रोहिणी देवी के पास जो नंद महाराज के निवास स्थान में है, और नंद गोकुले, और वो कौन है रोहिणी? वसुदेव भार्या, वसुदेव की एक पत्नी है। उस समय क्षत्रियों में और अन्यों में भी एक प्रथा थी कि एक क्षत्रिय अनेक पत्नियों से विवाह कर लेते थे। तो वसुदेव तो यहाँ पे मथुरा में थे देवकी के साथ में, लेकिन उनकी अन्य जो रानियां थी कंस के डर से वो गोकुल वृंदावन चले गए थे और नंद महाराज के संरक्षण में निवास कर रहे थे। तो श्री कृष्ण ने योग माया देवी से कहा,
गच्छन्ति वहां चले जाना,
गच्छ देवी व्रजम भद्रे,
और वहां चले जाकर
क्या करना, वहां क्यों चले गए हैं सब रानियां कंस के डर से,
और वहां जाके क्या करना,
देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्नवेशय।
तुम जाओ
देवक्या जठरे गर्भम, देवकी के गर्भ में, जठर में एक गर्भ है, एक बच्चा है,
और वो बच्चा कौन है?
शेषाख्यम धाम मामकम, वो मेरे ही अंश हैं, जिनको शेष कहते हैं या संकर्षण कहते हैं, वो बलराम है,
वो देवकी के गर्भ में है। तत् सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय,
तो उस शेष को आकृष्ट करके देवकी के गर्भ से स्थानांतरित कर देना रोहिणी देवी के गर्भ में।
तो ये महत्वपूर्ण
आदेश भगवान ने योग माया को दिया
और फिर कहा
कि इसके बाद मैं देवकी के गर्भ में प्रकट हो जाऊंगा मेरे षड ऐश्वर्यों के साथ साथ में, और तुम उधर वृंदावन में माता यशोदा के पुत्री के रूप में प्रकट हो जाओगी, और फिर तुम्हारे प्रकट होने के बाद पृथ्वी लोक के निवासी तुम्हारी उपासना करेंगे और तुम अनेक नामों से जानी जाओगी, जैसे भद्रकाली, विजया, ईशानी, शारदा, वैष्णवी इत्यादि। तो जाओ हे भद्रे,
हे देवी, तुम वहां चले जाओ,
और वहां पे जो रोहिणी के गर्भ से भी जो पुत्र उत्पन्न हो जाएगा उसका नाम होगा संकर्षण, क्योंकि तुम्हारे द्वारा वो आकृष्ट किया गया या वो स्थानांतरित किया गया देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। उस बच्चे का नाम राम भी होगा, क्योंकि वो ब्रज भूमि के निवासियों को आनंद प्रदान करेगा, और साथ साथ उस बच्चे का नाम बलभद्र भी होगा, क्योंकि वो बहुत बलवान होगा हर दृष्टि से। तो श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी कर दी कि जब वहां बलराम जी प्रकट हो जाएंगे तो वे तीन नामों से जाने जाएंगे, संकर्षण, राम और बलभद्र। और भगवान ने कहा कि वहां पे वृंदावन में रोहिणी देवी के गर्भ से बलराम जी प्रकट हो जाएंगे, और उसके बाद मैं देवी की माता के गर्भ में प्रकट हो जाऊंगा, और फिर मेरा जन्म वहां उसके बाद होगा। और इस प्रकार से ओम शब्द का उच्चारण करके योग माया देवी वहां से निकल पड़ी, और वैसे ही हुआ। हरिवंश पुराण में बताया गया है कि जब ऐसे योग माया देवी कर रही थी तो रोहिणी देवी के गर्भ में एक बच्चा था, और रोहिणी देवी जब रात में नींद की अवस्था में थी तो उन्होंने देखा कि अरे मेरे बच्चे का विनाश हो गया, तो बहुत चिंतित हो गई। लेकिन योग माया उनके पास आई और योग माया कहने लगी, हे देवी चिंतित नहीं होना, तुम्हारे बच्चे को मैंने बदल दिया है, अब देवकी के गर्भ से तुम्हारे घर में ये बच्चा आएगा और ईश्वर गुणों से सब गुणों से संपन्न होगा, कोई चिंता नहीं करना। और फिर से रोहिणी देवी नींद की अवस्था में आ गई और वहां बलराम का जन्म हो गया और नंद महाराज जो है बड़े प्रसन्न हो गए जब उन्होंने देखा कि अब रोहिणी देवी के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ। गर्ग ऋषि जो उनके कुल गुरु थे उन्होंने बताया कि ये वास्तव में देवकी का बच्चा है लेकिन देवकी के गर्भ से स्थानांतरित किया है योग माया देवी ने, इसलिए रोहिणी देवी के गर्भ से उनका जन्म हुआ है। लेकिन इस समय नामकरण करना उचित नहीं है क्योंकि कंस जब सुन लेगा कि बच्चे का जन्म हुआ है तो वो जैसे देवकी के 6 पुत्रों के साथ किया है उसने यहाँ इस बच्चे के साथ भी करने का प्रयास करेगा। और वैसे सातवें पुत्र का जब स्थानांतर हुआ माता देवकी के गर्भ से तो कंस के महल में सभी लोगों ने सोचा कि गर्भपात हो गया है, देवकी के गर्भ में जो सातवां बच्चा था उसका विनाश हो गया। लेकिन जो सत्य था वो किसी को पता नहीं था। वहां एक और राज खुलने वाला था वृंदावन में। बलराम जी प्रकट हो गए, इधर योग माया देवी प्रकट हो गई देवकी के सामने। कंस ने योग माया देवी को अपने हाथ में पकड़ के मारने का प्रयास किया लेकिन योग माया देवी उनकी मुट्ठी से निकल के ऊपर चली गई और ऊपर से कहने लगी, हे क्रूर कृष्ण, हे क्रूर कंस, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी हत्या के लिए कृष्ण जन्म ले चुका है कहीं और, वो तो बाद में हो गया कृष्ण के जन्म के बाद, क्योंकि जब स्थानांतरित किया कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव ने जाके कृष्ण को वहां रख लिया और योग माया को वो यशोदा माता से यहां ले आए। तो योग माया ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया, भगवान की लीला योजना उन्होंने कर दी। तो उधर कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण को भी वसुदेव ने वहां पहुंचा दिया। फिर दोनों कृष्ण और बलराम साथ साथ बड़े हुए। फिर गुप्त रूप से गर्ग ऋषि ने नामकरण का संस्कार किया, कृष्ण को कृष्ण नाम रखा और बलराम जी को भी ऐसे ही नाम रखे, बलराम, बलभद्र, संकर्षण आदि। तो इस प्रकार से इसी तिथि पर बलराम जी जो कि भगवान कृष्ण के अंश हैं, उनके पहले विस्तार हैं, वो प्रकट हुए। आज इस बलराम जयंती की तिथि पे हमें बलराम जी के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करें, हमारे हृदय को ऐसे शुद्ध बनाएं जिसके द्वारा श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होने के लिए प्रसन्न हो जाए। बलदेव जी गुरु तत्व आदि गुरु हैं, तो बलदेव जी की कृपा प्राप्त करना अर्थात गुरु की कृपा प्राप्त करना, गुरु के आदेशों का पालन करने से हमारा हृदय ऐसे इस योग्य हो जाएगा कि श्री कृष्ण वहां प्रकट हो जाएंगे। तो ये है बलराम जी का महत्व हमारे जीवन में। बलराम जी के हाथ में हल रहता है और श्री कृष्ण के हाथ में क्या रहता है, बांसुरी रहती है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि बलराम और कृष्ण दोनों ही ग्वालबाल थे वृंदावन में, तो बलराम जी क्योंकि हल हाथ में लेते हैं तो वो कृषि के प्रतीक हैं और श्री कृष्ण गायों से बहुत प्रेम करते हैं, गायों को चराते हैं, तो वो गो रक्षा या गो सेवा के प्रतीक हैं। इसलिए कृष्ण और बलराम मिलजुल के कृषि और गो रक्षा के प्रतीक हैं। तो जब हम ये दो कार्य भी करते हैं और साथ साथ भगवान की भक्ति करते हैं तो अवश्य भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आगे चल के बलराम जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं में बहुत सहायता की वृंदावन में, फिर आगे चल के मथुरा में, वृंदा और द्वारका में। कई बार ऐसे भी हुआ कि बलराम जी श्री कृष्ण के लीलाओं में शामिल नहीं कर गए, ये भी उनकी योजना थी। महाभारत के युद्ध में बलराम जी आए नहीं बीच में, उन्होंने मध्य स्थान स्वीकार किया क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और दुर्योधन बलराम जी के प्रिय शिष्य थे, तो बड़े द्वंद्व में पड़ गए बलराम जी। उन्होंने सोचा कि बलराम जी मेरा, दुर्योधन मेरा प्रिय शिष्य है, तो यदि मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करूंगा तो दूसरे पक्ष में तो श्री कृष्ण है, तो मैं श्री कृष्ण के विरुद्ध कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तो इसका उपाय मेरे लिए एक ही है कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा और मैं तीर्थ यात्रा में चले जाऊंगा। तो बलराम जी युद्ध में शामिल नहीं हुए, तीर्थ यात्रा में गए। अनेक तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते करते नैमिषारण्य भी आ पहुंचे। वहां पे वेद व्यास जी के एक शिष्य रोमहर्षण सूत पुराणों के ऊपर कुछ कथा कर रहे थे। अनेक ऋषिगण वहां पे एकत्र हुए थे कलयुग के लक्षणों को मिटाने के लिए, संसार की भलाई के लिए वो सब यज्ञ आदि करना चाहते थे। तो रोमहर्षण सूत से कथा सुन रहे थे और जैसे ही बलराम जी वहां आए तो जितने भी श्रोतागण थे वो सब खड़े हो गए अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए बलराम जी के प्रति, क्योंकि वो जानते थे कि ये स्वयं भगवान हैं। परंतु रोमहर्षण सूत अपने व्यासासन से उठे नहीं, तो बलराम जी को क्रोध आया कि ये व्यक्ति को थोड़ा घमंड हो गया है। उन्होंने एक घास का तिनका उठाया, उस घास के तिनके से रोमहर्षण सूत को स्पर्श किया और उस स्पर्श मात्र से ही रोमहर्षण सूत की मृत्यु हो गई। हाहाकार मच गया। ऋषियों ने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, आप जो भी कुछ कर सकते हैं, परंतु ऐसे करने से उत्पात हो जाएगा, क्या किया जा सकता है। फिर बलराम जी ने कहा आप ही बताइए अब रास्ता क्या है। फिर उन्होंने कहा संतों ने कि पिता जो है अपने पुत्र के रूप में जीता है, तो इसलिए इनके जो पुत्र हैं सूत गोस्वामी, उनको आप शक्ति प्रदान कर दीजिए। तो बलराम जी ने फिर सूत गोस्वामी को शक्ति प्रदान कर दी। फिर सूत गोस्वामी ने आगे चल के कथा करना प्रारंभ किया। तो उधर बलराम जी आगे चलते चलते फिर पहुंच गए कुरुक्षेत्र। उस समय युद्ध प्राय समाप्त हो चुका था। अब दुर्योधन हार गए थे भीमसेन के गदा के सामने। दोनों का युद्ध बड़ा बराबर का था, फिर भी श्री कृष्ण के चाल के द्वारा भीमसेन विजयी हो गए। बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन श्री कृष्ण ने किसी न किसी तरह से शांत कर दिया बलराम जी को। तो ऐसे भी कई घटना हुई है दोनों भाइयों के बीच में, ऐसे लीला हुई। एक बार जब अर्जुन श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह करना चाहते थे तो वेश बदल के सन्यासी के वेश में आए और विवाह करना चाहते थे। ये श्री कृष्ण की ही योजना थी, परंतु बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो और सुभद्रा तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि जानबूझ के ऐसे तुम कर लो, ले जाओ। हुआ जब बलराम जी को पता चला वो भी आग बबूले हो गए। फिर श्री कृष्ण पहले कहा था जब बलराम जी गुस्से हो जाएंगे मैं संभालूंगा। तो श्री कृष्ण बलराम जी के पास गए, पैर पड़े। तो बलराम जी श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं तो कैसे बात को मना टाल सकते हैं, नहीं मान सकते। फिर मामला सब शांत हो गया। तो ये लीलाएं सब हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, द्वारका, मथुरा आदि में हुई, लेकिन सबसे जो मधुर और मीठी लीलाएं हैं बलराम और श्री कृष्ण की, वो वृंदावन में हुए। बाल लीला से ही मधुर से मधुर लीला दोनों ने एक साथ में की। जैसे गौशाला में जाके छोटे बछड़ों के पूंछ को पकड़ लेना, और फिर बछड़े जो इधर उधर डर के मारे भागते रहे और पीछे ये लोग खींचते जाएं कृष्ण बलराम को, और गोपियां सब देख कर बड़े प्रसन्न होती थी, तालियां बजाती थी। और थोड़े बड़े हो गए तो बछड़ों को वो चराने के लिए ले गए, और बड़े हो गए तो बड़े गायों को चराने के लिए ले गए, और ऐसे गोचारण लीला उनकी हुई। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीला में बलराम जी ने श्री कृष्ण का साथ दिया। तो आज बलराम जयंती के इस पावन दिवस पर बलराम जी के चरण कमलों में ऐसे ही प्रार्थना करेंगे कि हमारे हृदय में उन वृंदावन की लीलाओं को प्रकट करने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए, ताकि श्री कृष्ण और उनके सारे जो भक्तगण हैं और धाम है वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। बलराम जी बड़े कृपालु हैं, अवश्य हृदय पूर्वक याचना सुनने पर वो हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे। श्री बलराम जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। एक तो प्रश्नों के लिए समय है, फिर आगे का कार्यक्रम होगा। आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो अब थोड़ी सूचनाएं होंगी और उसके बाद फिर आरती और कीर्तन।
हरे कृष्ण, सर्वप्रथम हम धन्यवाद देना चाहेंगे और स्वागत भी करना चाहेंगे भक्ति स्वामी महाराज का, जो आज हमारे बीच में है, तीन बार जोर से हरि बोल।